اوكي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में सूरह मायदा की तफसीर हम पढ़ रहे हैं मार्क कुरान जिल्द नंबर 3 से, और इसमें तीसरी आयत की चल रही है जिसके मारूफ मसाइल पर हम हैं, और सफ़ा नंबर 31 31 पर है, 31 के ऊपर है। यह तो पिछली क्लास के अंदर पूरी क्लास में हमने सिर्फ तकरीबन एक ही बात करी थी, तो आखिर में शायद 5-10 मिनट हमने कुछ और आगे बात करी थी। वो पूरी की पूरी बात किया थी कि किसी भी साहिबे कलाम, किसी भी स्पीकर, उसकी बात को समझने के लिए इल्म चाहिए होता है। किस चीज़ का इल्म? उस स्पीकर के बारे में इल्म चाहिए होता है, और जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात कर रहा है उसका इल्म चाहिए होता है, तब बात समझ में आती है सुनने वालों के। अगर सुनने वालों के पास ये इल्म नहीं है तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है? उनको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है? अधूरी समझ में आएगी या गलत समझ में आएगी, ठीक है? अधूरी समझ में आएगी या गलत समझ में आएगी। तो इस वजह से जो इल्म वाले हैं, किस चीज का इल्म? भाई जिसकी बात हो रही है, जो स्पीकर है उसका इल्म, उसके कॉन्टेक्स्ट का इल्म। तो जिन लोगों के पास वो इल्म है तो उनसे फिर पूछना पड़ता है डायरेक्ट थ्रू, विदाउट एनी प्रॉपर चैनल के डायरेक्ट नहीं बात समझ में आती, बल्कि उल्टी समझ में आती है, ठीक है ना? ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। इसके अंदर जो है वो कोई रूहानियत और कोई जो है वो दीन के टर्मिनोलॉजीज वगैरह के शैतान होता है, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसको कोई शैतान होता है, ठीक है ना? ये है ही नहीं इसके अंदर, ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? ये तो वो बात मानेगा ना जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझता हो और शैतान को के अमल को समझता हो, उसके इन्फ्लुएंस को समझता हो, यकीन हो उसका, कुछ बुनियाद बनी हुई, यानी जिसकी कुछ बुनियाद बनी हुई है वो इस बात को मानेगा कि भाई शैतान जो है ना वो ये काम कर रहा है, ठीक है? जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं वो इस बात को कैसे मानेगा, वो क्यों मानेगा इस बात को? उसी तरीके से उलमा जो है वो वरासतुल अंबिया है, ठीक है ना? माशाल्लाह हदीस मुबारक सुना दी, उलमा वरासतुल अंबिया, ठीक है ना? अब सुनने वाला या तो वो हदीस का इनकार करता है, मुनकर हदीस है, तो फिर वो क्यों मानेगा आपकी इस बात को, आपकी इस दलील को? वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हदीसों का इनकार करता है, ठीक है ना? तो वो तो आपकी इस दलील को नहीं मानेगा ना कि उलमा वरासतुल अंबिया, तो इस वजह से हमें उलमा से पूछना चाहिए, ठीक है? वो कहता है नहीं भाई, ये तो मैं तो नहीं मानता, मैं खुद आलिम हूँ, मैं खुद आलिम हूँ, मैं खुद जो है वो नबी का वारिस हूँ, ठीक है ना? वो बना लेगा अपनी तरफ से कोई हुज्जत, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बना लेगा। या अगर वो हदीस का इनकार नहीं करने वाला है, अगर वो मुनकर हदीस नहीं है, तो फिर वो कहेगा हाँ बात तो सही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, बात तो बिल्कुल ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लेकिन 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 को आप फिर फिल करें, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन वो आगे क्या कहेगा, लेकिन के आगे क्या कहेगा, जिसकी बुनियाद नहीं बनी हुई, जिसकी फाउंडेशन जो है वो है ही नहीं, वो आगे से क्या कहेगा? अगर वो मुनकर हदीस नहीं है तो वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगी? जी क्या कहेगी भाई, या क्या कहेगा भाई। चलो जी, कि उलमा तो हैं लेकिन ये जो उलमा है ना जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये करप्ट हो चुके हैं, ये उलमाए हक नहीं है, ये उल्टी बातें करते हैं, राइट, ये जो है वो गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा यही चल रही है ना मार्केट के अंदर, ये उलमा जो है ये गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। मेरा जो सही हीरो है उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते, राइट? तो चूंकि मेरे हीरो को सपोर्ट नहीं करते इस वजह से ये गलत है, ठीक है? तो इस वजह से ना इनसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन लेनी नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगी, खुद पढ़ूंगा और खुद समझूंगा, बस खलास, ठीक है ना? क्योंकि मेरा भी अल्लाह है, सिर्फ तुम्हारा अल्लाह कोई थोड़ी है, मेरा भी तो अल्लाह है, ठीक है ना? तो इस वजह से ना वी हैव टू रियलाइज द सिचुएशन, वी हैव टू रियलाइज द सिचुएशन कि हम किस दौर में खड़े हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या करते हैं हम, एज्यूम, विच मीन्स वॉट, ASSUME, क्या मतलब होता है एज्यूम करने का, मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं जी, क्या मतलब होता है एज्यूम करने का, ASSUME क्या होता है इसका मतलब, यू मेक एन खोता आउट ऑफ यू एंड मी, ठीक है? खोते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे आगे नहीं जाते, ठीक है ना? तुम अपने आप को और मुझे गधा बना रहे हो, व्हेन यू आर एज्यूमिंग थिंग्स, आप एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ उसकी फाउंडेशन बनी हुई है, वो उलमा को अच्छा समझता है, या जो है वो हदीस का इनकार नहीं करने वाला। दिस इज अ बिग अजम्पशन एंड मोस्ट लाइकली इन दिस डे एंड एज दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, ये आपकी अजम्पशन जो है ना ये गलत होगी, क्योंकि अगला बंदा जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो हदीस को मानता ही नहीं होगा, राइट? या वो हदीस को मानता होगा तो वो उलमा को नहीं मानता होगा। तो भाई अजम्पशंस तो ना करें ना, अजम्पशंस ना करने का मतलब क्या होता है, अजम्पशंस ना करने का मतलब ये होता है कि गुमान पर बात ना किया करें, ठीक है? किसी के बारे में अपनी तरफ से गुमान कर लिया, भाई यू हैव टू लर्न द पर्सन, यू हैव टू नो अबाउट द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग टू, राइट? अपने ऑडियंस को समझें, अपने ऑडियंस को जो है ना उसका इल्म हासिल करें, उसके बारे में जानें, फिर उसके बाद उससे बात करें, राइट? पहले उसको सुने, और इसके लिए सबसे, इसके लिए क्या जरूरी होता है, सुनना, यू हैव टू हेयर द अदर पर्सन आउट। जब आप उसको सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ खड़ा हुआ है, राइट? वो बंदा कहाँ खड़ा हुआ है तब आपको पता चलेगा। इसी वजह से अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, एक्टिव लिसनर, बी अ गुड लिसनर। वो क्यों है बी अ गुड लिसनर, यानी इवन डॉक्टर को कहा जाता है बी अ गुड लिसनर, ठीक है ना? टीचर को कहा जाता है बी अ गुड लिसनर, सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि बी अ गुड लिसनर, ठीक है? या ये कि माशाल्लाह ये नुसुक एप्लीकेशन तलबिया चल रहा है। अच्छा, तो खाली स्टूडेंट को बी अ गुड लिसनर नहीं, टीचर को भी बी अ गुड लिसनर होने की जरूरत होती है। अब ये बात है कि भाई क्लास में तो टीचर ने पढ़ाना है, तो बी अ गुड लिसनर किस वक्त बनता है, जब वो प्राइवेट काउंसलिंग हो रही होती है, प्राइवेट जो सेशन हो रहा होता है ना उसके अंदर टीचर हैज टू बी द गुड लिसनर। उससे क्या पता चलता है कि भाई ये जो स्टूडेंट है, या जो जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है जिसको कि आपने कोई बात समझानी है, आपको कुछ पता तो चले ना कि वो है क्या, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, क्या उसका बैकग्राउंड है, तब आप उससे सही बात कर सकेंगे ना, तब आप अपना मैसेज उसके सामने पुट कर सकेंगे, ठीक है? हम एज्यूम करके शुरू हो जाते हैं अकेले बंदे से, क्लास में तो आप नहीं कर सकते, क्लास में तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं और ये मजबूरी में एज्यूम कर रहे हैं कि भाई आप जो आए हुए हैं ये जो है वो कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए आए हैं, और कुछ देख दाख करके किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर आए हैं, है ना? वरना तो आपको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे आने की, ठीक है? तो इस वजह से ये मजबूरन हमें एज्यूम करना पड़ रहा है कि हम आपके साथ जो है ना वो ये बातें कर रहे हैं, और वी एज्यूम के आप जो है वो सुनने के लिए आए हुए, और इस फकीर को जानते भी हैं थोड़ा सा, इसकी बुनियाद पर सुनने के लिए आए हैं। फिर आगे आप सवाल करेंगे तो फिर हम आपको मजीद बताएंगे उसके बाद, ठीक है ना? तब हमें आपकी पर्सनल हालात का पता चलेगा, जब आप सवाल करेंगे, जब आप हमसे आकर के बात करेंगे, फिर हम आपके हिसाब से मैसेज पुट करेंगे, ठीक है ना? आपके हिसाब से मैसेज उस वक्त पुट करेंगे, अभी नहीं पुट कर सकते इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से मैसेज, ठीक है? तो दावत और तबलीग का काम हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका तरीका सीखने की जरूरत होती है। तरीका क्या है भाई, आप अपने ऑडियंस को समझें पहले, और फिर अपने मैसेज को भी उससे, बल्कि मैसेज को उससे पहले समझें, फिर ऑडियंस को समझें, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान वन टू वन रिलेशनशिप बनाएं कि कैसे मैसेज को जो है वो इस वाली ऑडियंस के ऊपर पुट करना है, ठीक है ना। ये है दावत और तबलीग का तरीका सीखना और सीख करके ये काम करना, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं तुक्के में शुरू हो गए और जो है वो, ठीक है। बहरहाल तो सूरह माईदा की जो मारफू मसाइल में हम आगे पढ़ रहे हैं कि इस्तिकसाम बिल अज़नाम, ठीक है, यानी तकसीम करना जलम के जरिए से। जलम जो है वो उन तीरों को कहते हैं जो कि जाहिलियत अरब के जमाने में वो लॉट्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो पिछली क्लास शायद हमने इसी बात पर खत्म करी थी कि ये जो हाथ के नकूश देख करके फाल निकाल करके ये सारे के सारे जो है ना वो इस्तिकसाम बिल अज़लाम के अंदर दाखिल हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर ये चीजें बड़ी आम, बहुत ज्यादा आम है, कि पहले ज्यादा आम होती थी, अब जो है वो बताए कुछ कमी आई है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं इस्तिकसाम बिल अज़लाम का लफ्ज कभी कमार यानी जुए के लिए भी बोला जाता है, ठीक है, यानी ये इन सब चीजों को भी दाखिल है, और ये कभी जुए के लिए भी, ठीक है, यानी लॉटरी वगैरह जिसको कहते हैं, या और कौन सा वर्ड है इसके लिए, ड्रॉइंग लॉट्स, जुआ, तो जुए के लिए भी बोला जाता है। तो जिसमें कुरा अंदाजी या लॉटरी के जरिए से हुकूक की तायीन की जाए, गैमलिंग, जरा ठीक है, मतलब कॉमन वर्ड है गैमलिंग, ठीक है। ये भी बिनस कुरान हराम, यानी कुरान जो कि नुसूस में से एक नस है, सबसे बड़ी नस क्या है कुरान, ठीक है, नस क्या, किसको कहते हैं, नून सौद, नून सीन वाली नस, तो वो जो आपकी रगें होती हैं उसको नस कहते हैं ना, सीन वाला, लेकिन सौद वाला जो है ये कुरान, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला की तरह, अल्लाह ताला का कलाम है। और फिर दूसरी नस क्या है, वो है हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलाम का, और ठीक है, या सुन्नत मुबारक, ठीक है। तो नस कुरान से ये हराम है, ठीक है, जिसको कुरान करीम ने मैसर के नाम से ममनू करार दिया है। इसीलिए हजरत सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और शेबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह अरब अजलाम के जरिए से हिस्से निकालते, इसी तरह फारस व रोम में शतरंज और चौसर वगैरह की मोहरों से ये काम लिया जाता था, ठीक है। शतरंज, चेस, कोई मुसलमान होगा जिसने चेस ना खेली हो, ठीक है, सिवाय शायद कोई अल्लाह के वली का बेटा होगा, बेटी होगी, तो उसने चेस ना खेली होगी, वरना तो सबने खेली, ठीक है। हमारे बचपन में हम तो बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे अपने खानदान के अंदर, चेस के, अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है। और चौसर, चौसर क्या है, ये हदीस मुबारका में चौसर का लफ्ज नहीं आया है, नर्द शेर का लफ्ज आया है। का चांद नजर आ गया है, आजकल सेलफोन ज्यादा मुसलमान हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा। तो नर्द शेर, ठीक है, हदीस मुबारका के अंदर यानी बिल लफ्ज इन दोनों का जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, एक हदीस मुबारका है इसकी, मन लाइबा बिल शतरंज व नर्द शेर फकअन्नमा गमसा यदहू फी दमिल खिंजीर, ठीक है, के जो के शतरंज और नर्द शेर को खेलता है तो वो ऐसा ही है कि जैसे उसने खिंजीर के खून में अपना हाथ डुबो दिया। और दूसरी हदीस में के फी लहमे खिंजीर व दमी, खिंजीर के गोश्त और खून के अंदर अपने हाथ को डुबो दिया, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों जो हैं वो हदीस मुबारका की नस से साबित हैं कि ये दोनों चीजें जो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी तशबीह दी है, खिंजीर जो कि ना सिर्फ ये कि हराम है बल्कि नजासत की भी, यानी टोटल नजस चीज है, ठीक है। तो यानी जैसे क्या कहते हैं, शेर का गोश्त है वो हराम है खाना, लेकिन वो नजासत के की डेफिनेशन में नहीं आता, जिस तरह खिंजीर का गोश्त है वो नजासत के डेफिनेशन में आता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं और उसकी जो है वो अल्लाह ताला ने फितरत ही ऐसी बनाई है हमारे इम्तिहान के लिए, ठीक है। तो इस वजह से फुकहा ने नर्द, हाँ, नजसुल आइन का लफ्ज, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है वो नजस है, असल असल असलन वो नजस है। तो फुकहा ने फिर इन हदीसों की वजह से, जो कि एक से ज्यादा हदीसें हैं शतरंज और नतशेर वगैरह के ऊपर, इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है। ठीक है, कि यानी हराम के बिल्कुल नजदीक है ये मकरूह तहरीमी का जो जो कैटेगरी बनती है। और अगर इसके अंदर यानी शतरंज में और नर्थ शेयर के अंदर अगर जुआ यानी शर्त वगैरह लग जाए, गैम्बलिंग हो जाए, तो फिर तो ये हराम है, हराम। ठीक है, तो हराम और मकरूह तहरीमी में फर्क क्या है कि हराम जो है वो तवातुर या मशहूर अहादीस से या तवातुर वाली अहादीस से जो चीज नबी अलैहिस्सलाम ने मना करी है, जो चीज हम तक पहुंची है कि ये मना है, तो वो हराम। ठीक है, लेकिन अगर कोई हदीस सही हदीस हो लेकिन तवातुर से ना पहुंचे, तो उससे जो है ना फिर उसकी हुरमत को उसको हराम नहीं कर सकते, बल्कि उसको जो है वो मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी के जो कैटेगरी है इसका, इसकी हिकमत क्या है कि ये इंसान को बड़ी आसानी से हराम मिले जाते, ये हराम के बहुत करीब होती है, मकरूह तहरीमी वाला जो अमल होता है बहुत करीब होता है, यानी बस अब गिरा हराम में या तब गिरा हराम। ठीक है, तो शतरंज का ये मामला है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर अपनी अकल लगाते हैं और अपना तजुर्बा इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसके जरिए से जो है ना वो जहन शार्प होता है। ठीक है, तो भाई आपका जहन तो शार्प होता है, अगर हो गया तो क्या करेंगे इस शार्प जहन का, ज्यादा जहन्नुम कमाएंगे शार्प जहन से। ठीक है ना, ठीक है, जहन शार्प, ठीक है ना, यानी होता है या ना होता है ये तो स्टडीज से पता चलेगा या किसी को एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ठीक है ना, कि शार्प होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारा मकसद जहन शार्प करना है, है? ये कोई छुरी है जिसको कि हमने जो है वो नाइफ क्या कहते हैं उसको, उसके जरिए से शार्प करना है। ठीक है, तो हमें तो भाई गुनाहों से बचना है, बंदगी करनी है, अल्लाह को राजी करना है और जन्नत में पहुंचना है, तो उसके लिए इस किस्म की शार्पनेस हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है ना, हमें तो तौफीक चाहिए, हमें शार्पनेस नहीं चाहिए कि हम बैठ करके मैथमेटिकल इक्वेशंस को ज्यादा तेजी से सॉल्व कर लें। उसके लिए अल्लाह ताला ने कंप्यूटर बनवा दिए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं अपने दिमाग को कंप्यूटर बनाने की। ये सोच है किसी के अंदर है? हम चक्कर में लगे रहते हैं अपने बच्चे को ना कंप्यूटर बना दें किसी तरीके से, या खुद कंप्यूटर बन जाए किसी तरह। भाई कंप्यूटर अल्लाह ने बनवा दिया, भाई अल्लाह ने अगर इस सिफत के साथ भेजा है, सलाहियत के साथ भेजा है, तो ठीक है, आप होंगे वो चेस चैंपियन, क्या नाम था उसका, गैरी कैस्परोव या कोई और, ठीक है, लेकिन जब नई अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो अब शतरंज खेल करके सलाहियत पैदा करने की कोशिश करो। ठीक है ना, यानी जिसको अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से ऐसे तशबीह दी है, नस से हदीस से साबित है, अब उसके जरिए से जहन शार्प करोगे, तो फिर वो जहन क्या करेगा, ये शार्प जहन है? हराम के जरिए से शार्प हुआ, मकरूह तहरीमी के जरिए से शार्प हुआ, तो फिर आगे उसने क्या करना है, हराम ही करना है, फिर जाकर के अपने जहन को इस्तेमाल करके जो है वो नुकसान ही पहुंचाना है ना फिर अपने आप को और अल्लाह के दूसरे बंदों को। तो हमें तो चाहिए ही नहीं है ये शार्पनेस ऑफ माइंड, हमें तो नहीं चाहिए ये शार्पनेस ऑफ माइंड। अपने जहन को ऐसा बनाए और अपने औलादों के जहन को ऐसा बनाए कि भाई नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के बोले मुझे नहीं चाहिए वाली शार्पनेस। ठीक है, लेकिन वही हिंदुओं से बात सुन सुन करके और ईसाइयों से और यहूदियों की बातें सुनते रहते हैं हर वक्त, काफिरों की और एथियस्ट लोगों की बातें सुनते रहते हैं, वो इन्हीं चीजों को पीटते रहते हैं, शार्प जहन बनाओ, शार्पनेस होती है, उससे ये फायदा होता है, उससे वो फायदा होता है। यानी जो आखिरत का इनकार करने वाले, नबी और अल्लाह का इनकार करने वाले, उनसे हम जो है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग्स ले रहे होते हैं, अपनी डेफिनेशंस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है इस ईमान का भाई तुमने, जिसके अंदर तुम जो है वो कुरान और हदीस से, नबी अलैहिस्सलाम से और उलमा और मशाइख से डेफिनेशंस लेने की बजाय जो है जो बिल्कुल ही जो इनकारी हैं उनसे तुम अपनी डेफिनेशंस ले रहे हो, और उसके ऊपर दनादन नमाजें भी पढ़े चले जा रहे हो और दनादन जो है वो चक्कर भी काटे चले जा रहे हो कहीं पे जाकर के। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमान तो नहीं है। ठीक है, तो बुनियाद तो नहीं है भाई तुम्हारे अंदर, अब उसके ऊपर जो है वो आमाल की इमारत इमारत पे इमारत करे चले जा रहे हो। ठीक है, तो बुनियाद तो ये है ना कि एतमाद उधर नहीं करना है और एतमाद इधर करना है, ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। ठीक है, हमारी बुनियाद जो है ना वो थ्योरेटिकल शुरू होती है, जो हमने रटी हुई होती है ना चीजें, वो हम समझते हैं वो बुनियाद है, हालांकि मतलब उसका अलिफ भी नहीं पता होता हमें। ठीक है, जिसका मतलब पता है ना वो हम समझें और उसके ऊपर अमल करें, एतमाद। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद, ये बुनियाद है, चाहे कुछ भी उन्होंने कहा हो, ठीक है। और उधर एतमाद नहीं, उधर एक दूसरी तरफ नहीं एतमाद करना, ये बुनियाद है। ठीक है जी, आगे फरमाते हैं कि इस्तिक्साम बिल अज़नाम की हुरमत के साथ इरशाद फरमाया, ज़ालिकुम फिस्क, यानी ये तरीका किस्मत मालूम करने या हिस्सा मुकर्रर करने का फिस्क और गुमराही है। ठीक है, ये सीधा रास्ता नहीं है, ये आपने रास्ते को गुम कर दिया है, एंड यू हैव लॉस्ट योर वे एंड यू विल नेवर गेट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है ना, आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे इस रास्ते से, ये गुम कर चुके हैं आप अपना। इसके बाद इरशाद फरमाया, अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, कि आज के दिन तुम्हारे दीन पर गालिब आने से, कुफार तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो चुके हैं, इसलिए अब तुम उनसे कोई खौफ ना रखो, अलबत्ता मुझसे डरते रहो। ठीक है, तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो चुके हैं, क्या मतलब इसका, दीन पर गालिब आने से मायूस हो चुके हैं, ठीक है, क्या मतलब है इसका, जल्दी जल्दी से बता दें कि काफिर तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, कोई नए भाई बताएं तो अच्छा होगा। ठीक है, जो पहले सुनते रहे हैं या माशाल्लाह जिनकी कुछ बुनियाद बन गई है, तो उनसे तो हम तवक्को करें, उनको तो पता ही होना चाहिए इसका मतलब। ये मतलब क्या, दीन पर गालिब आ जाना, काफिर तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए। ठीक है, दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए, व्हाट डज इट मीन, दे कैन नॉट चेंज योर दीन एंड दे हैव लॉस्ट होप, दे कैन नॉट चेंज योर दीन एंड दे हैव लॉस्ट होप इन चेंज इन इन द एबिलिटी टू चेंज द दीन। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ठीक है, दीन जो है ना, ये किसी इमारत का नाम नहीं है, वो तो तश्बीह दी जाती है इमारत से ना, कि इसके 5 पिलर हैं और दरमियान वाला पिलर जो है वो कलमा है, और उसके अलावा 4 पिलर जो है वो उसके साइड्स में हैं, नमाज रोजा हज ज़कात, तो इमारत से तश्बीह दी जाती है, लेकिन असल में कोई थोड़ी है ये कोई इमारत। ठीक है, कि वो तुम्हारे दीन पे गालिब आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो दीन की इमारत पर कब्जा कर लें आकर के, ना तो ये कोई इमारत है, ना ये किसी शहर का नाम है, ना ये किसी किताब का नाम है, कि भाई एक किताब रखी हुई उसका नाम है दीन, ठीक है ना, द दीन बुक, राइट। अब काफिर आए और उस किताब के ऊपर कब्जा कर ले और उस किताब को जो है वो आग लगा दे, तो दीन के ऊपर गालिब आ गया, इसका मतलब है। ठीक है, ये ऐसी दी ऐसी कोई चीज नहीं है, ये दीन ऐसी कोई भी चीज नहीं, दीन क्या है, ठीक है, दीन जो है ये सोच का नाम है, फिक्र का नाम है, आइडियोलॉजी का नाम है, जो कि इंसानों के जहन में रहती है, इंसानों के जहन में रहती है, ठीक है, ये है दीन, यानी इसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, फिजिकल वैल्यू नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल चीज है, ये एक आइडियोलॉजिकल चीज है, जो कि इंसानों के जहनों में रहती है, और इसका असर जो है फिर इनके जिस्मों पर भी होता है और इनकी रूहों पर भी होता है, इनके दिलों पर भी होता है, ठीक है ना, असर होता है जिस्म के ऊपर, जिससे फिर वो ऐसे करके अल्लाह अकबर करना शुरू कर देता है जिस्म, और ऐसे करके रुकू करना शुरू कर देता है, ऐसे करके जो है वो सजदा करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जिस्म पर असर हो गया इस आइडियोलॉजी का, और दिल पर असर क्या हो गया इस आइडियोलॉजी का, ठीक है, दिल पर असर क्या हो गया कि दिल जो है वो उसकी चाहतें तब्दील हो जाती हैं, दुनिया को चाहने के बजाय आखिरत को चाहना शुरू कर देता है, रूह चाहत से ताल्लुक रखती है, तो इस इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का असर जो है वो रूह पर पड़ता है, चाहतें तब्दील हो जाती हैं, अल्लाह की रजा के मुताबिक हो जाती हैं, तो ये है दीन। तो दीन पर गालिब आने का मतलब क्या हुआ, दीन पर गालिब आने का मतलब ये हुआ कि आपके जहन के अंदर जो ख्यालात है ना, ये आपने जो सवाल किया ना, कैन वी से दीन इज अ वे ऑफ लाइफ, नो, ये ना ये बहुत ही डिसीविंग किस्म का जुमला बन गया है, इसको हम खत्म करें, दीन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जो के जिस्म जो फिर आमाल करते हैं ना उसको हमने दीन कहना शुरू कर दिया है, और सोच को हमने बिल्कुल दीन से निकाल दिया है बाहर। ठीक है, सोच कुछ भी हो आमाल बस होते रहे, है ना, सोच के बगैर ही आमाल होते रहे, सोच कुछ और हो और आमाल कुछ और हो, यानी भेड़ चाल वाले आमाल हैं, इसको दीन कह दिया हमने। ठीक है ना, तो इस वजह से इस जुमले को अब जरा सा हम हालात के हिसाब से इसको मॉडिफाई करें, ठीक है ना, कॉन्टेक्स के हिसाब से, जिस कॉन्टेक्स में हम रह रहे हैं, जिस ऑडियंस के साथ हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से इस जुमले को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो दीन पर गालिब आने का मतलब यह है कि इंसानों की सोचों को तब्दील कर दें, इंसानों की सोचों को तब्दील कर दें, जो सोच नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम तक पहुंची है, उस सोच के अंदर कोई ना कोई ऊपर नीचे कर दें, नीचे की चीज को ऊपर कर दें, ऊपर की चीज को नीचे कर दें, बुरी चीज को अच्छा बना दें, अच्छी चीज को बुरा बना दें, और लोग ऐसे सोचना शुरू हो जाएं। ये होता है दीन पर गलबा, ये होता है दीन पर गलबा। ठीक है, इंसानों के सोचों पे गलबा इज दीन पर गलबा, इज इक्वल टू दीन पर गलबा। ठीक है, यानी आपकी सोचों को मैनिपुलेट कर दें और उसको मॉडिफाई कर दें, ये दीन पे गलबा है। दीन किसी इमारत का नाम नहीं है, दीन किसी शहर का नाम नहीं है, दीन किसी मस्जिद का नाम नहीं है, दीन किसी किताब का नाम नहीं है। ठीक है ना, और ये वे ऑफ लाइफ वाला तो जुमला आपने सुना हुआ है, तो आपने इधर मार दिया अगर नहीं। ठीक है, तो वो मायूस हो गए। अब वो मायूस हो गए कि जी इनकी सोचों को चेंज नहीं कर सकते, अब हम इनकी सोचों को चेंज नहीं कर सकते, इनकी सोचें जो है वो पक्की हो चुकी हैं, और इनका जो है ना वो सोचों को सपोर्ट करने के लिए जिन असबाब की जरूरत पड़ती है, सोचों को सपोर्ट करने के लिए कि सोचें कायम रहें किसी की, उसके लिए कुछ असबाब चाहिए होते हैं, उसके लिए कुछ माहौल चाहिए होता है, उसके लिए कुछ टीचिंग्स चाहिए होती हैं। ठीक है ना, एक सपोर्टिव सिस्टम जिसको के असबाब का निजाम कहते हैं उर्दू के अंदर, ये असबाब का निजाम जो है वो अब बन चुका है। ठीक है ना, जो कि इन सोचों को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, एम्पावर कर रहा होता है इन सोचों को। ठीक है ना, अब वो इतने स्ट्रॉन्ग असबाब बन चुके हैं कि हम इनको इनकी सोचों को नहीं तब्दील कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपनी दुश्मनी तो इनकी खत्म नहीं होती कि अब जो है ना वो मायूस हो गए तो अब दुश्मनी खत्म कर दी, नहीं, वो किस बात से मायूस हुए हैं? वो ये इस बात से मायूस नहीं हुए कि वो मुसलमानों से आप लड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, नहीं, वो तो बस सोचों को चेंज करने की एबिलिटी से मायूस हुए हैं। तो अब उनके पास क्या रास्ता था कि भाई सोच को तो तब्दील कर नहीं सकते, चलो बंदे को ही मार दो, बंदे को ही मार दो, यहां से खत्म कर दो इसको। ठीक है ना, ला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो वो फिर दीन को खत्म करने की उन कोशिशों के अंदर लग गए, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में ऐसा नहीं। और इस वक्त जो है जैसे कि आपने फरमाया, ना ओरेज इट इज द अदर वे अराउंड, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड बट इट हैज गॉन बैक टू द ओरिजिनल वे। अब सोचों को सपोर्ट करने वाले असबाब जो हैं वो बहुत मुश्किल हो गए हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, और सोचों को अनसपोर्ट करने वाले बल्कि खराब करने वाले असबाब फिर से बिल्कुल गालिब आ चुके हैं, बिल्कुल यानी फैल चुके हैं हर तरफ। ठीक है ना, हमारा पूरा का पूरा माहौल जो है, ठीक है, फिजिकल हो या वर्चुअल हो, वो पूरा का पूरा माहौल क्या है, सोचों को खराब करने वाला माहौल है, सोचों को खराब करने वाला। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि उनकी जो मायूसी है ना वो फिर से उम्मीद में तब्दील हो गई है या हो रही है। ठीक है, फिर से उस उम्मीद में वो लग गए हैं कि अब जो है ना वो हमें इनको मारने की जरूरत नहीं है, बस इनकी सोचों को तब्दील करने की जरूरत है, जो कि बड़ा आसान काम है अब हमारे लिए, हमारे लिए बड़ा आसान काम है, पहले ही तालीमी निजाम के जरिए से हम कर ही चुके हैं। ठीक है ना, स्कूल सिस्टम और जो है वो कॉलेज सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम के जरिए से पहले ही हम इनकी सोचों को अच्छा खासा तो पहले ही तब्दील कर चुके हैं। अब बाकी ईमानदार जो थोड़ी सी रह गई है वो फिर हमारा मीडिया है ना, वो काम करने के लिए हमारा मीडिया बहुत है, और ऐसा मीडिया है, ठीक है ना, जो कि यानी हम उसके अंदर डूबे हुए हैं, है है, बिल्कुल डूब चुके हैं, अब हमारी सांस भी नहीं आ रही उस मीडिया के अंदर, बस सांस चल रही है। वो एक तरह का वो है, ये मीडिया हमारा जो है ना वेंटिलेटर है, राइट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये हमारा, ये जो मीडिया है ना, इनका बनाया हुआ मीडिया, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम सांस भी लेते हैं ना, तो वो हम इस मीडिया के बगैर सांस नहीं ले सकते। जैसे जो मरीज वेंटिलेटर पे चला जाए ना, वो वेंटिलेटर के ही ऑक्सीजन सिस्टम से ही सांस लेता है, उसके बगैर वो सांस नहीं ले सकता। हमारा ये हाल हो गया इस वक्त, ठीक है? तो इतना आसान है। अब वेंटिलेटर के ऊपर जो मरीज पड़ा हुआ हो, तो पीछे से जो डॉक्टर साहब हैं या जो जो टेक्नीशियन साहब हैं, तो वो तो अब मरीज उनके हाथों का खिलौना है ना, राइट? अब वो वेंटिलेटर के अंदर जो करें, वो मरीज जो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है वेंटिलेटर के ऊपर, राइट? तो जो उसको देना चाहो वो दे सकते हैं, वो आगे से चूं चरा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो हम इस वक्त जो है ना, वो वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर किसका बनाया हुआ है? काफिरों का बनाया हुआ है। मैं फिजिकल वेंटिलेटर की बात नहीं कर रहा, वो भी काफिरों का ही बनाया हुआ है, वो भी कोई मुसलमान ने नहीं बनाया, ईमान वालों ने नहीं बनाया। लेकिन हम तो अभी स्पिरिचुअल वेंटिलेटर और वर्चुअल वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमारे दुश्मनों ने बनाया हुआ है, एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया, ठीक है? हम जो है ना, वो गुमान हमारे बड़े हैं, इस्लाम गालिब आ चुका है, इस्लाम गालिब आ गया है, और ईमान वाले औलिया कराम गालिब आ गए हैं, ये तो हम गुमान है ना हमारे, राइट? हम जो है वो हवाओं में उड़ने वाले, हमारी यानी हमारी तो जब कुछ उड़ना ना आता हो तो कम से कम हवाओं में तो आप उड़ सकते हैं ना, ठीक है ना? उड़ना फिर आता तो है नहीं, तो फिर आप मुहावरतन उड़े, हवाओं में उड़े, ठीक है ना? तो अब हम हवाओं में उड़े हैं, और वो भी कैसे उड़े हैं, वो भी हमें मीडिया ही उड़ा रहा है, राइट? मीडिया ही हमें उड़ा रहा है, इस्लाम गालिब आ चुका, औलिया कराम गालिब आ चुके हैं, औलिया कराम गालिब आ चुके हैं हर जगह जगह जगह, हर थोड़े दिन के बाद किसी जगह औलिया कराम गालिब आ जाते हैं, ठीक है? ये किधर से आ रहा है भाई? मीडिया से आ रहा है सारा का सारा, ठीक है? और ग्राउंड रियलिटी रियलिटी तो नजर ही नहीं आ रही ना। वेंटिलेटर पे जो मरीज पड़ा हुआ है, उसको कहाँ से ग्राउंड रियलिटी, उसको तो आपके जो हॉस्पिटल बेड होता है उसके नीचे का ग्राउंड उसको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो तो वेंटिलेटर पर है ना। कभी देखा है किसी को वेंटिलेटर? मैंने तो नहीं देखा वैसे, लेकिन मैं अपने जो सुना है उससे बता रहा हूँ खाली। उसको तो अपने बिस्तर के नीचे की ग्राउंड नजर नहीं आ रही होती, जो रियलिटी है उस ग्राउंड के ऊपर, यही हाल हमारा है। हम चूंकि वेंटिलेटर पर है, हमें कोई ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही है ना, हालांकि ग्राउंड वहीं पर है, दूर नहीं है हमसे, राइट? ग्राउंड दूर पे थोड़ी होता है, वो तो वहीं पर होता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो ये आपने फरमाया कि ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट एंड शॉकिंग, हकीकत तो यही है, लेकिन अंधे को क्या नजर आएगा, ठीक है? तो ये है भाई, अब आप करते रहे जितना भी गालिब भाई, इस वक्त ऐसे हालात नहीं, हाँ आएंगे, नबी रसूलुल्लाह ने बताया है, हालात चेंज होंगे, ऐसा होगा, लेकिन अभी हम उस फेज में नहीं है, अभी हम इस फेज में हैं कि जिसमें के काफिरों को ये उम्मीद लग गई है कि इनके अंदर जो सोचें थी ना ईमान वाली, बस वो भी बाएं हाथ का खेल है, बस वो हम थोड़े दिन में वो भी निकाल देंगे जो बाकी ईमानदार बच गए हैं, वो भी, ठीक है? और हमें कोई जरूरत नहीं है इनको मारने छारने की, ठीक है ना? वो सब सब कह रहे हैं कि हमें इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से, है ना, जो क्या कहते हैं उसको हमारे हजरत, ये मुहावरा पढ़ते हैं कि जो मीठा खिला के मरता हो उसको जहर खिलाने की जरूरत क्या है भाई? तो आज वो हमें मीठा खिला के मार रहे हैं, ठीक है? दीदार कोर को क्या आई नजर क्या देखे, ठीक है? ये तो खैर वो तो जोबन वाली बात थी, दीदार कोर को जोबन, लेकिन बात वही है कि जो अंधा उसको क्या नजर आएगा, ठीक है? तो वो मीठा खिला के हमें मार रहे हैं। डायबिटीज वैसे भी जो है वो सबसे खतरनाक मर्ज कहलाता है दुनिया के अंदर, ठीक है? और हम गलबे के शौक में जो है ना, वो हम जितना बाकी ईमानदार नजर रह गई थी ना, वो भी जिनमें रह गई थी उनमें भी लगता है वो भी खत्म हो गई है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि ये आयत हिजरत के 10वें साल हज्जतुल वदा के यौम अरफा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल, ठीक है ना? ये फकीर तो इसको बुरहाने रब्बी, नहीं यानी अब दिल की खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम अभी बिल्कुल आज का जो है वो पहला दिन है ये मिडिल ईस्ट के अंदर, और बाकी जगहों पर भी चांद निकल चुका है, या जुलहज्जा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अय्याम हज के अंदर हम मौजूद हैं, और यही वाली आयत जो है वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि आयाम हज के अंदर ही नाजिल हुई थी, जबकि मक्का मुकरमा और तकरीबन सारा अरब फतह हो चुका था, पूरे जजीरतुल अरब पर इस्लामी कानून जारी था। ठीक है, यानी जितना भी पोर्शन जजीरतुल अरब का तकरीबन मेजोरिटी हो चुका था, तो लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो अक्सर तो जजीरतुल अरब जो है वो इस्लाम में दाखिल हो चुका था, कुछ इलाके छोटे मोटे से रह गए थे, तो वो तो अक्सर के ऊपर आप कुल का हुक्म लगा देते हैं, इसी वजह से देते हैं लिखा कि पूरे जजीरतुल अरब पर इस्लामी कानून जारी था। इस पर फरमाया कि अब से पहले जो कुफार ये मंसूबे बनाया करते थे कि मुसलमानों की जमात हमारे मुकाबले में कम भी है और कमजोर भी है, उनको खत्म कर दिया जाए, अब ना उनमें ये हौसले बाकी रहे ना उनकी वो ताकत रही है, क्योंकि अब असबाब जो है ना वो आ गए मुसलमानों के हाथों, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जैसे आ गए हैं, राइट, अकरमा बिन अबी जहल, अकरमा रजी अल्लाह तआला अन बिन अबी जहल जैसे लोग जो हैं वो आ चुके हैं इनके पास। ठीक है, और भी एक से एक जंगजू, तो इसलिए मुसलमान उनसे मुतमईन होकर अपने रब की अतात व इबादत में लग जाए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अब जिहाद को तर्क कर दें और मुसल्ला पकड़ें और बस सजदे पे सजदे करते चले जाएं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि अब जो है ना वो जो भी हुक्म आ रहा है ऊपर से अमीर का, उस हुक्म की अताअत में लग जाओ, और जो है वो बाकी जो इबादतें होती हैं उसके अंदर खूब इत्मीनान से लगो, और अब जो है वो एक्सपेंशन का टाइम शुरू हो चुका है। तो फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। इस आयत के नुज़ूल की खास शान है, अरफा का दिन है, कि इस आयत के जो यानी शान नुजूल है वो खास है, बड़ा अरफा का दिन है जो तमाम साल के दिनों में सैयदुल अय्याम है, और इत्तेफाक से ये अरफा जुमा के दिन वाकई हुआ। ठीक है, इत्तेफाक का मतलब पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, इत्तेफाक का मतलब हजरत का ये होता है कि अल्लाह की रजा से यही हुआ कि जुम्मे का दिन है और अरफात का दिन, यानी बेस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ऐसा जो है ना वो सेट किया मामला के जुमे को अरफा पड़ रहा है, तो अरफात के दिन शुरू हो चुके हैं, और आपके पास यकीनन, हमने तो बल्कि अभी तक कोई फॉरवर्ड भी नहीं करी है, लेकिन बहुत सारी हदीसें दीनदारों के पास पहुंच रही हैं कि भाई ये जो 10 दिन होते हैं ये बेहतरीन दिन होते हैं, और इनके अंदर यानी इबादत के बहुत सवाब बढ़ जाता है, और कुर्बानी जो है वो सबसे बड़ी इबादत होती है, जो कि 10 जिलहज्जा को जाकर के इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से करेंगे। तो इसके फजाइल मारूफ हैं, ठीक है, जुमे के दिन के फजाइल, फिर अरफा के दिन के फजाइल, मकाम मैदान अरफात का जबल रहमत के करीब है, जो अरफा के दिन अल्लाह ताला की तरफ से नुजूल रहमत का खास मकाम है। ठीक है, यानी रहमत वहां पे नाजिल होती है, फिर बाकी अरफात के मैदान के अंदर वो स्प्रेड होती है। वक्त असर के बाद का है, जो आम दिनों में भी मुबारक वक्त है, ठीक है, खास जिक्र के लिए असर के बाद का वक्त, क्योंकि ये दिन के इख्तिताम का वक्त होता है। अब तो जिस तरह फितरतें मस्ख हो गई, उसी तरह से जो है वो दिन की डेफिनेशन भी मस्ख कर दी। ठीक है, कुफार के हाथों में जब चीजें जाएंगी तो फिर ऐसे ही होगा ना, इंसान की फितरत भी मस्ख होगी, दिन की फितरत भी मस्ख होगी, रात की फितरत भी मस्ख होगी। अब रात जो है वो दिन बन गया, और दिन जो है ना वो खत्म ही होकर के देता है, असर के वक्त भी जो है वो दिन ढलता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोगों का तो दिन शुरू होता है असर के बाद। ये फितरत के मस्ख होने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अरफात के दिन, अच्छा क्या लिखा, व्हाट अबाउट रमजान एंड लैलतुल कदर, इजंट दैट द बेस्ट ऑफ द डेज। इसके ऊपर उलमा ने फिर काफी सारी तफसील लिखी है, लेकिन ये जो है ना यानी रमजान मुबारक की फजीलत वो अपनी जगह पर है, और ये उसके अलावा के दिनों में, ठीक है, ये जो अरफा का दिन है और जो है वो अरफात की रात है, ये उसके अलावा जितने दिन ना रमजान मुबारक के अलावा, उनमें ये सबसे ज्यादा अफजल है। इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यही है, ठीक है, लेकिन रमजान की फजीलत इससे कोई कम नहीं होती, और वो है मतलब 700 गुना या 70 गुना जो है वो सवाब पड़ जाता है चीजों का सब। ठीक है, बेसिकली दिस इज यानी ऑल दीज आयात और अहादीस वगैरह जो है वो इन दिनों की फजीलत को करने के लिए होती है। अच्छा, वक्त असर के बाद का है, जो आम दिनों में मुबारक वक्त है, और खुसूसन यौम जुमा में कि कबूलियत दुआ की घड़ी बहुत सी रिवायात के मुताबिक इसी वक्त आती है, और अरफा के रोज और ज्यादा खसूसियत के साथ दुआएं कबूल होने का खास वक्त है। अच्छा, एक और बात आपके इसमें, वन तावील, अच्छा चले आपका बनी लिख दी, वन तावील कैन बी दैट कदर इज नाइट एंड जुलहज्जा रिलेटेड हदीस हदीस आर अबाउट डेज। नहीं, लैलतुल कदर तो है रात, लेकिन जुलहज्जा में भी जो है ना वो भी एक ऐसी रात आती है जो कि पूरे साल की रातों से मुख्तलिफ है ना। क्या है वो जो सूरह फजर, वल फजर वलयाल इन अशर व शफ वल बदर वल लैली इज़ा यसर, ठीक है। तो वहां पर उसकी आप तफसीर पढ़ें तो वहां पर रात भी फजीलत के अंदर दाखिल, ठीक है ना। वो खास रात है जिसका के वो भी है ना कि वो जिस जो के जिसके बाद का दिन जो है वो भी उसका दिन है और जिससे पहले का दिन वो भी उसका दिन है, ठीक है। तो लेकिन एक और बात ये है कि भाई फजीलतें जो है ना वो फिर इवन दूसरे मुकामात पर भी जो है ना, जैसे नबियों की फजीलतें आती हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना कंपैरिजन नहीं करते हैं हम कि भाई इसकी फजीलत, अच्छा इनकी फजीलत है तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं, है? अच्छा इनकी फजीलत जो है वो इतने पॉइंट ज्यादा बन गई और दूसरे नबी की जो फजीलतें आई हैं उनकी कैलकुलेशंस करके उनकी फजीलत ज्यादा बन गई, ठीक है। ऐसे कंपैरिजंस नहीं करते हैं, ठीक है ना, बल्कि यानी आइसोलेशन में इनकी फजीलत की बात हो रही है, फिर अलग आइसोलेशन में इनकी फजीलत की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली जो जो आम लोग हैं उनके मुकाबले में इनकी फजीलत ज्यादा है, आपस में कोई थोड़ी कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों का अपना मुकाम है। उसी तरीके से ये जो रातें हैं और ये जो दिन हैं तो इनका अपना अपना मुकाम है ना वो। अच्छा, बस आखिरी बात करके जो कि यहाँ पे लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन चूंकि अभी इतनी बात हुई है, बड़ी मायूसी की बात है ना, लोग तो फिर फौरन शुरू हो जाते हैं मायूस कर रहे हैं कि जी हम इतने कमजोर हो गए हैं और इतना मुश्किल बन गई है और जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर चले गए हैं, ये तो बिल्कुल ही मायूसी वाली बात है ना, है ना। और बाकी लोग तो नहीं करते मायूसी वाली बातें, ये भी बहुत होता है, बाकी लोग तो नहीं करते मायूसी वाली बातें। तो भाई इसके ऊपर भी एक बात सुन लीजिए, आप में से माशाल्लाह बच्चों को तो बात ज्यादा अच्छी तरीके से पता है, उनके सामने कई दफा हो चुकी है, कि ये मायूसी वाली बात नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस बात, बहुत बड़ा हमारे लिए इसके अंदर फायदा है। वो क्या है कि भाई फिजिकली तो हम इतने स्ट्रांग हो गए ना, यानी असबाब हमारे खत्म हो गए, असबाब हमारे पास नहीं, जो भी असबाब नजर आ रहे हैं ना वो सारा धोखा है, कोई असबाब नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन इंटेलेक्चुअली तो हमारे पास सबसे स्ट्रांग चीज मौजूद है, बल्कि हकीकत यह है कि वाहिद स्ट्रांग चीज मौजूद इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि दूसरों की जो आइडियोलॉजीज हैं उनके यानी इस्लाम की आइडियोलॉजी के मुकाबले में दूसरों की आइडियोलॉजी जीरो है, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकल असबाब की बात करते हैं तो फिजिकल असबाब तो भाई फिजिकल होते हैं ना, तो वो दूसरों के फिजिकल असबाब के मुकाबले में हमारे फिजिकल असबाब तो आज तो जीरो है ना, लेकिन इवन तारीख में भी हमारे फिजिकल असबाब हमेशा गैरों के फिजिकल असबाब से कम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास बेहतरीन एडवांटेज है कि फिजिकल तो लड़ाई खत्म हो गई, अब तो सारी की सारी जो चीज है वो तो मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना। तो अब जैसे हमारे जैसे ओही अल्लाह वाले लोग भी हैं, हजरत फरमाते हैं ना कि जी हम अगर हम सात तवाफ कर लें ना तो फिर सुभान अल्लाह की जगह ओही अल्लाह निकलेगी, यानी ये हमारी हालत है फिजिकली, ठीक है ना। ना तो हाथ में जान है, ना पैर में जान है, ना जो है वो अकल में जान है, ना जो है वो किसी और चीज में जान है, ठीक है ना। तो इसमें तो हम वैसे ही इतने कमजोर, यानी आप सोचें ना, जरा सा सोचें, ये लोग घोड़े के ऊपर बैठ करके लड़ाइयाँ क्या करते थे, ठीक है ना। तो वो उनके एक तो घोड़े को मैनेज करना, हैंडल करना, मैनूवर करना, और फिर उसके बाद जो है ना वो तीर कमान भी चलाना और तलवार जो इतनी इतनी भारी तलवार होती है यार, असल तलवार को कभी उठा के देखा है, नेजा तलवार, और फिर आगे जो खून की जो है वो नदियां बह रही होती हैं, है ना। हम में से कोई कर सकता है? कोई एक भी नहीं कर सकता, चाहे वो पहलवान क्यों ना हो, कोई एक बंदा भी इस तरीके से फाइटिंग नहीं कर सकता। तो फिजिकली हम कितने कमजोर हो गए, और फिर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, असबाब के एतबार से देखें, तो ठीक है, हकीकत में कुछ नहीं है हमारे पास, ईमान वालों के पास कुछ भी नहीं है, बाकी होगा किसी के पास, ठीक है। तो भाई इंटेलेक्चुअल मामला रह गया ना, तो इंटेलेक्चुअल भाई, तो इंटेलेक्चुअल में क्या मुश्किल काम है, बस यही है कि अपना सेलफोन को जरा साइड पे रखें, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो खत्म करें और तवज्जो से अल्लाह से दुआ मांगें, राइट, अल्लाह से जुड़े, गुनाहों से तौबा करें, और जो है वो इल्म हासिल करें कि मेरे ऊपर क्या हुकूक आते हैं, उनको कैसे अदा करना है, क्या मुश्किल काम है इनके अंदर। कोई उठक बैठक नहीं करनी है, कोई आपको जो है वो 7 या 20 तवाफ नहीं करने जा करके, कोई आपको जो है ना वो जिहाद नहीं करना है, कोई घोड़े को मैनूवर नहीं करना, कोई आपको टैंक को भी मैनूवर नहीं करना, घर में बैठे राइट और इल्मी हलके का हिस्सा बने और अपने अकायद को ठीक करें, गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगें और जो है वो दीन को समझें और आगे समझाएं। कितना आसान काम हो गया हमारे लिए। तो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये मायूसी की बात नहीं है, ये तो ऐन होप की बात है कि हम फिजिकली वेंटिलेटर पर हैं, इंटेलेक्चुअली वेंटिलेटर पे से उतरना हमारे लिए बहुत आसान काम है, चुटकी बजाने वाला काम है इंटेलेक्चुअल वेंटिलेटर पर से उतरना हमारे लिए। बस तौबा करने की जरूरत है, बस तौबा करने की जरूरत है। वो हम नहीं कर रहे तो वो हमारा कसूर है ना भाई, कि नहीं करके दे रहे तौबा, लगे हुए अपने खराफात के अंदर। ठीक है, तो हम मायूसी की कोई बात नहीं है, जिसका अल्लाह हो ना वो कभी भी मायूस नहीं हो सकता, और जिसके असबाब हो अल्लाह ना हो तो उसके लिए तो फिर मायूसी मायूसी है और कुछ भी नहीं है उसके पास। अल्लाह ताला हमें अपने से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नाफरमानियों से जो है ना वो तौबा की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।